कुछ ऐसे भी योगी थे जो इस संसार के बंधन तथा दुखों से छोड़ना चाहते थे, और उन्होंने श्री कृष्ण को क्या देखा? ए हरि बोल, ठीक से सुनो, ध्यान से सुनो, इधर उधर देख रहे हो तुम। उन्होंने श्री कृष्ण को उस परम तत्व के रूप में देखा जिसके दर्शन से उनकी तीनों प्रकार की तापों की व्यथा शांत हो रही थी। श्री कृष्ण का दर्शन उनके लिए उस वर्षा के समान था जो संसार रूपी जंगल में विविध प्रकार के दुख रूपी अग्नि को शांत कर रही थी। इस प्रकार योगियों ने श्री कृष्ण के प्रति शांत रस में आकर्षण का अनुभव किया। अब दसवां है दास रस। वहां पर जो विष्णुवंशी थे उन्हें पता था कि श्री कृष्ण ही उनके स्वामी हैं। उन्हें यह रहस्य ज्ञात था क्या कि श्री कृष्ण के आदेश से ही उन्हें मथुरा से गोकुल भेजा गया है। श्री कृष्ण को देखकर वे उत्सुक हो उठे कि इस समय श्री कृष्ण उन्हें जो भी आदेश देंगे वे अविलंब उस आदेश का पालन करेंगे। इस प्रकार विष्णुवंशियों ने श्री कृष्ण के प्रति दास रस में आकर्षण का अनुभव किया। तो ये चर्चा हुई अभी तक कृष्ण नाम की। कृष्ण नाम का मतलब क्या है? जिसमें सब प्रकार का आकर्षण हो। तो 10 प्रकार के रसों में आकर्षण की चर्चा हुई। अब अर्जुन ने चूंकि यहाँ पर श्रेय पूछा है कि श्रेय बताइए, तो श्रेय के बारे में भी जो है मेरा एक लेख है, 30वां लेख है। ये पहले अध्याय का 31वां श्लोक है, इस पर जो मेरा लेख है इसमें भी अर्जुन ने श्रेय की बात करी है। अर्जुन कहते हैं नचा श्रेयो नुपस्यामी हत्वा सुजन महावे। इनकी पंक्तियां मैं पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। इस श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण से श्रेय की बात कर रहे हैं कि अपने जीवन में दो बातों पर विचार करता है, और वे हैं पहला प्रेय और दूसरा श्रेय। प्रेय तथा श्रेय में क्या अंतर है? प्रेय उस सुख को कहते हैं जो हमें तत्काल प्राप्त होता है, ठीक है ना? प्रेय कहते हैं उसको जो तुरंत प्राप्त हो। इसे रजोगुणी सुख भी कहा जा सकता है। भगवान ने गीता के 18वें अध्याय के 38वें श्लोक में कहा है जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और जो प्रारंभ में अमृत के समान और अंत में विष के समान लगता है वो सुख रजोगुणी कहलाता है। इस श्लोक के पूर्व में अर्जुन ने प्रेय की बातें कही थी। अर्जुन ने बताया था किस युद्ध के कारण उनके शरीर के अंग कांप रहे हैं, मुख सूख रहा है, शरीर अकड़ गया है और उनका मन भी भ्रमित हो रहा है। दूसरे शब्दों में अर्जुन के मन तथा इंद्रियों को कष्ट हो रहा है। हमारे मन और इंद्रियां सदा प्रेय की कामना करते हैं, ठीक है ना? मन इंद्रियां क्या चाहते हैं? प्रेय। इसी कामना को शास्त्रों ने काम रूपी शत्रु बतलाया है। अभी तक अर्जुन ने श्री कृष्ण को यह बताया था कि इस युद्ध से उन्हें प्रेय की अर्थात तात्कालिक सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, परंतु अब इस श्लोक में अर्जुन श्रेय की बात बतला रहे हैं। श्रेय उस सुख को कहते हैं जो हमें लंबे समय के बाद प्राप्त होता है। इसे सत्वगुणी सुख भी कहा जा सकता है। गीता के 18वें अध्याय के 39वें श्लोक में भगवान कहते हैं जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में क्या है? अमृत के समान है। और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है वह सात्विक सुख कहलाता है। दूसरे शब्दों में श्रेय इस जीवन के बाद मिलने वाले सुख को समझना चाहिए। तो यहाँ पर अर्जुन का कहना है किस युद्ध से ना तो उन्हें प्रेय की प्राप्ति हो रही है और ना ही उन्हें श्रेय की प्राप्ति होगी। दूसरे शब्दों में अर्जुन ये कहना चाहते हैं किस युद्ध से अर्जुन को ना तो इस जीवन में ही सुख मिलेगा और ना ही उन्हें अगले जीवन में ही सुख मिलेगा। मनुष्य जीवन की विशेषता यही है कि व्यक्ति श्रेय की कामना करे, अन्यथा पशु पक्षी आदि सभी जंतुओं तथा मनुष्य में क्या अंतर है? यदि मनुष्य अपने जीवन में प्रेय अर्थात इंद्रिय सुख की ही कामना करता है, परंतु मनुष्य श्रेय की कामना तभी करता है जब वो समझे कि इस जीवन के बाद क्या अगला जीवन है। इस समय कलयुग के प्रभाव में आकर बड़े बड़े शिक्षित लोग भी अगले जीवन के विषय में विचार नहीं करते हैं। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने इन शिक्षित मनुष्यों की तुलना किससे की है? पशुओं से। ये शिक्षित मनुष्य क्या है? पशु जैसे। पशु कभी भी अगले जीवन के विषय में विचार नहीं करता, क्योंकि उसके पास ऐसी बुद्धि नहीं है। परंतु मनुष्य के पास ऐसी बुद्धि है। यहाँ पर प्रश्न उठता है कि क्या कारण है कि मनुष्य के पास ऐसी बुद्धि के होते हुए भी वह अपने अगले जन्म पर विचार नहीं करता। इसका उत्तर यह है कि कलयुग ने मनुष्यों की बुद्धि क्या कर दी? नष्ट कर दी है। कलयुग को परीक्षित महाराज ने कितने स्थान दिए? 4 स्थान। पहला है नशा, जैसे चाय, कॉफी, पान, बीड़ी, सिगरेट, शराब, गांजा, भांग, अफीम, सुपारी, तंबाकू का सेवन। दूसरा स्थान तामसी भोजन, जैसे प्याज, लहसुन, अंडा, मांस, मछली का भोजन। तीसरा स्थान क्या? पर स्त्री तथा पर पुरुष गमन, अर्थात विवाह के बाहर स्त्री पुरुष संबंध। और चौथा जुआ तथा लॉटरी। जो व्यक्ति इन 4 प्रकार के व्यसनों में से यदि एक भी व्यसन में फंसा हो तो वह अगले जन्म के विषय में विचार नहीं कर सकता। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने इस हरे कृष्ण आंदोलन को तेजी से फैलाने के लिए, हरे कृष्ण आंदोलन में समर्पित भक्तों के लिए उपरोक्त 4 प्रकार के व्यसनों का कठोरता से त्याग करने के लिए आदेश दिया है। जब कोई व्यक्ति इन 4 व्यसनों का त्याग करता है तो वह अगले जन्म के विषय में कुछ जिज्ञासा कर सकता है। परंतु फिर भी वह भौतिक आसक्तियों से झगड़ा होने के कारण अपने परम कल्याण की अधिक जिज्ञासा नहीं कर सकता। क्या समझे? जिज्ञासा करता है कुछ, लेकिन ज्यादा जिज्ञासा नहीं कर सकता। क्यों? भौतिक आसक्तियां हैं इसलिए। अतः उपरोक्त 4 व्यसनों का त्याग करने से भी अधिक आवश्यक क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। 4 नियमों से ज्यादा आवश्यक नियम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। जब हरे कृष्ण महामंत्र की शब्द ध्वनि हमारे कानों के अंदर जाती है तो हम चाहे समझें या ना समझें, क्या होता है? ये हरे कृष्ण महामंत्र अपनी शब्द ध्वनि के द्वारा हमारी चेतना को पवित्र करता है तथा कलयुग के प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने हरे कृष्ण आंदोलन में समर्पित भक्तों के लिए प्रतिदिन कम से कम कितना? 16 माला का जप करना अत्यंत आवश्यक बतलाया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र में 16 नाम हैं। जब हम इस मंत्र का 108 बार जप करते हैं तो एक माला पूरी होती है। इस प्रकार जब हम 16 माला का जप करते हैं तो कुल नामों की संख्या कितनी होती है? 27,648। 27,648 नाम होते हैं, जिसे सुरक्षा के लिए हम 25,000 मानते हैं। सामान्य व्यक्ति दिन भर में अर्थात 24 घंटे में लगभग 25,000 श्वास लेता है। क्या समझे? दिन भर में आप लगभग कितनी श्वास लेते हैं? 25,000। यदि प्रत्येक श्वास में हम कम से कम एक बार भगवान का नाम लें तो हमें 24 घंटे में कम से कम 25,000 नाम लेने होंगे। यद्यपि 16 माला का जब 2 या 3 घंटों में भी पूरा किया जा सकता है, परंतु फिर भी इनसे नामों की संख्या 24 घंटों की श्वासों की संख्या के बराबर हो जाती है। इस प्रकार जब व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र के उच्चारण के द्वारा पवित्र हो जाता है तो उसके मन में भगवद गीता के पवित्र विषय के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न होती है। ऐसा व्यक्ति भगवद गीता को समझने के लिए प्रामाणिक भक्तों से प्रश्न करता है तथा उनकी सेवा करता है। क्या समझे? आप हरे कृष्ण महामंत्र के जाप से अगर आप शुद्ध होते हैं तो फिर भगवद गीता के बारे में आप प्रश्न करोगे और सेवा करोगे। भगवद गीता अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। क्यों? क्योंकि इसमें अर्जुन ने अनेक बार श्री कृष्ण से श्रेय के विषय में जिज्ञासा की है। श्रेय दूसरे अध्याय के सातवें श्लोक में अर्जुन ने कहा है क्या, यह श्रेयस्यान निश्चितम रोहितन में शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, अर्थात जो मेरे लिए श्रेय हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूं और आपका शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दीजिए। अर्जुन की इन बातों से पता चलता है कि मनुष्य जीवन में श्रेय की प्राप्ति करने के लिए हमें शास्त्र, साधु तथा आचार्यों की शरण लेनी परम आवश्यक है। अर्जुन के मन में श्रेय को प्राप्त करने की कितनी प्रबल इच्छा है, इस बात का पता चलता है जब वे पुनः तीसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में कहते हैं क्या, क्या कहते हैं, तदेकम वद निश्चित येन श्रेयो हम आपनुयाम, अर्थात अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि मेरे लिए सर्वाधिक श्रेय क्या होगा। जिस प्रकार से अर्जुन का बाण अपने लक्ष्य तक पहुंचने में कभी भी नहीं चूकता, उसी प्रकार से उनके समस्त प्रश्नों का एक ही लक्ष्य है, क्या, किस प्रकार से श्रेय की प्राप्ति हो। एक ही पूरी भगवद गीता में अर्जुन एक ही प्रश्न पूछते हैं। पांचवें अध्याय के प्रथम श्लोक में भी वे यही प्रश्न करते हैं, आज का श्लोक क्या, ये श्रेय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम, अर्थात कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएं कि कौन सा मार्ग श्रेयस्कर है। इस प्रश्न के उत्तर में भगवान ने बताया है यद्यपि संन्यास और कर्मयोग दोनों ही श्रेयस्कर हैं, परंतु फिर भी कर्म संन्यास की अपेक्षा क्या, कर्मयोग विशिष्ट है। यहाँ पर शिला प्रभुपाद कर्मयोग का अर्थ भक्तियुक्त कर्म बतलाते हैं। श्रीमद् भागवत में भी भक्ति को ही श्रेय को जन्म देने वाली बतलाया गया है। भक्ति को क्या बतलाया गया है, श्रेय को जन्म देने वाली। कैसा श्लोक है, श्रेय धृतिम भक्ति मुदस्ते विभो क्लिश्यन्ते केवल बोधलम दये केसाम सौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यथा स्थूल तो सावघाती नाम। श्रीमद् भागवत का दसम स्कंद अध्याय 14 श्लोक संख्या 4, ब्रह्मा जी श्री कृष्ण से कह रहे हैं हे प्रभु, श्रेय को जन्म देने वाली आपकी भक्ति को छोड़कर केवल ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए जो लोग परिश्रम करते हैं उन्हें केवल परिश्रम ही प्राप्त होता है। जिस प्रकार से यदि कोई थोथे धान को कूटे तो क्या प्राप्त होता है, थोथे धान को कूटे तो क्या प्राप्त होता है, परिश्रम। केवल परिश्रम ही प्राप्त होता है, चावल के दाने कभी प्राप्त नहीं होते। इस श्लोक में ब्रह्मा जी बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, वे भक्ति की तुलना धान से करते हैं। जिस प्रकार धान के अंदर चावल भरा रहता है उसी प्रकार भक्ति के अंदर क्या भरा है, श्रेय कल्याण भरा है। भक्ति के अंदर श्रेय भरा हुआ है, तो यहाँ श्रेय की तुलना चावल के दाने से की गई है। जिस प्रकार धान से चावल के दाने उत्पन्न होते हैं उसी प्रकार भक्ति के द्वारा श्रेय उत्पन्न होता है, इसलिए भक्ति देवी को श्रेय की जननी भी कहा जाता है। परंतु यहाँ पर केवल ज्ञान की तुलना थोथे धान से की गई है, केवल ज्ञान। आप ध्यान से सुनिए, केवल ज्ञान, थोथे धान को चाहे जितना भी कूटा जाए उसमें से चावल के दाने कभी भी निकल नहीं सकते, उसी प्रकार से केवल ज्ञान के द्वारा कभी भी श्रेय की प्राप्ति नहीं हो सकती। केवल ज्ञान का अर्थ क्या है, केवल ज्ञान का अर्थ है भक्ति रहित ज्ञान, क्या समझे, केवल ज्ञान का अर्थ क्या है, भक्ति रहित ज्ञान, अथवा वेदों में जिसे ज्ञान कांड कहा गया है उसे केवल ज्ञान समझना चाहिए। इसमें कोई व्यक्ति केवल ज्ञान के द्वारा मुक्ति प्राप्त करना चाहता है, भगवान की सेवा प्राप्त नहीं करना चाहता है। इस प्रकार की मुक्ति स्थायी नहीं होती, व्यक्ति को ऐसी मुक्ति के पद से गिरकर पुनः इसी संसार में जन्म लेना पड़ता है। इस बात की पुष्टि में देवतागण भगवान से कह रहे हैं क्या, भागवत का श्लोक है, ये नेर विंदाक्ष विमुक्त मानिनस तो ये स्तभावाद विशुद्ध पुंधया आरोह कृत्रेण परम पदम तथा
आपकी भक्ति को छोड़ दिया है, वे यदि अपने को मुक्त समझते हैं
तो आपकी भक्ति से रहित होने के कारण उनकी बुद्धि अशुद्ध है। यदि वे अत्यंत परिश्रम से मुक्ति के परम पद को भी प्राप्त कर लें तो भी वे अपने उस पद से नीचे गिर जाएंगे, क्योंकि उन्होंने आपके चरण कमलों की सेवा का अनादर किया है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि श्री कृष्ण के चरण कमलों के प्रति भक्ति ही जीव का एकमात्र क्या है, श्रेय। गीता के 4वें अध्याय के 33वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं क्या, हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेयस्कर है। श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञाज ज्ञान यज्ञ परंतप। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं, यथार्थ ज्ञान का अंत कृष्ण भावनामृत में होता है, जो दिव्य ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। यहाँ पर दिव्य ज्ञान का अर्थ है क्या, श्री कृष्ण की महिमा का ज्ञान, और यही पूर्ण ज्ञान है। जबकि केवल ज्ञान पूर्ण ज्ञान नहीं है, उसमें केवल यही ज्ञान होता है कि हम इस भौतिक संसार में जन्म मृत्यु का कष्ट भोग रहे हैं, तथा जीवन का लक्ष्य यही है कि हम जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाएं। क्योंकि इस केवल ज्ञान में श्री कृष्ण की शरणागति का ज्ञान नहीं रहता, इसलिए यह केवल ज्ञान पूर्ण ज्ञान नहीं है, तथा इस केवल ज्ञान से कभी भी श्रेय की प्राप्ति नहीं हो सकती। गीता के 30वें अध्याय के 35वें श्लोक में भी श्रेय शब्द 2 बार आया है। श्रेयान सुधर्मो विगुण परधर्मात्मनुसृतात् सुधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अर्थात अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। स्वीय कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेयस्कर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। इस श्लोक के द्वारा अर्जुन की इस बात का उत्तर मिल जाता है कि अर्जुन कहते हैं कि युद्ध में सज्जनों को मारकर मुझे कोई श्रेय नहीं दिखाई देता, तो यहाँ पर भगवान उत्तर देते हैं कि यद्यपि अर्जुन के सुधर्म में ये दोष है क्या कि उनके सज्जनों का वध हो रहा है, परंतु ये सुधर्म ही श्रेयस्कर है। अर्जुन का विचार था यदि वे इस युद्ध में मारे जाएं तब तो उनका कल्याण हो सकता है, परंतु समस्या तो ये है कि यदि वे युद्ध करेंगे तो उनका युद्ध में मरना संभव नहीं है। इसका एक कारण तो ये है कि अर्जुन पूर्व में भी भीष्म द्रोण के सहित संपूर्ण कौरव सेना को हरा चुके हैं। आप समझे, अर्जुन पहले ही हरा चुके हैं पूरी सेना को, भीष्म द्रोण सबको हरा चुके हैं। किस समय, जिस समय राजा विराट के महल में 5 पांडव तथा 1 द्रौपदी गुप्त रूप से रह रहे थे, और दुर्योधन को चिंता थी क्या यदि इनके अज्ञातवास का 1 वर्ष पूरा हो जाएगा तो इन्हें पुनः अपना राज्य वापस मिल जाएगा, अतः किसी प्रकार से इन 5 पांडव तथा 1 द्रौपदी का पता लगाना चाहिए, ताकि इस प्रकार से इन्हें फिर से 12 वर्ष का वनवास दिया जा सके। राजा विराट के साले कीचक की रहस्यपूर्ण ढंग से हत्या हुई, जिसे भीमसेन के अतिरिक्त और कोई भी मार नहीं सकता। अतः उन्हें संदेह हुआ क्या कि संभवतः पांडवगण विराट नगर में ही छिपे हुए हैं, कीचक मारा गया है तो भीमसेन ही मार सकते हैं, अब भीमसेन है तो 5 पांडव वहीं पर छिपे हुए हैं। पांडवों को प्रकट करने के लिए कौरवों की संपूर्ण सेना ने राजा विराट की गऊओं का हरण कर लिया। क्यों, 5 पांडव वीर हैं, अब गऊएं हरण करेंगे तो वो आ जाएंगे सामने, और सामने आ जाएंगे तो हम उनको पता लगा लेंगे और फिर से 12 साल का वनवास देंगे। उन गऊओं की रक्षा के लिए अर्जुन ने संपूर्ण कौरव सेना को पराजित किया। सौभाग्य से पांडवों की अज्ञातवास का 1 वर्ष भी पूरा हो चुका था। वो सोच रहे थे कि 1 साल पूरा नहीं हुआ, जबकि 1 साल पूरा हो गया। इस प्रकार अर्जुन को विश्वास था कि इस युद्ध में उनकी मृत्यु नहीं हो सकती यदि वे युद्ध करेंगे। इसलिए अर्जुन ने इस अध्याय के 45वें श्लोक में कहा है, यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध ना करने वाले को मारे तो ये मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। इस प्रकार अर्जुन का विचार है कि यदि वे युद्ध ना करें तथा इस प्रकार से वे अपने सज्जनों द्वारा मारे जाएं तो श्रेय होगा, परंतु यदि वे युद्ध में अपने सज्जनों को मारेंगे तो श्रेय नहीं होगा। परंतु श्री भगवान का कहना है कि अपने सुधर्म में मरना भी क्या श्रेय है, तथा अपने सुधर्म में जीना भी श्रेय है। अब एक 47वां श्लोक लेख है भगवत गीता का, दूसरा अध्याय श्लोक संख्या 7, इसमें भी अर्जुन ने क्या कहा है भगवान से, ये श्रेयस्यां निश्चितं रोहितं, जो कुछ श्रेय हो वो निश्चित रूप से मुझे बताइए। तो इसकी कुछ पंक्तियां हैं, मैं पढ़ के सुना रहा हूं। अर्जुन कहते हैं ये श्रेयस्यां निश्चितं रोहितं, अर्थात जो मेरे लिए कल्याणकारी हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब भागवत में 11वां स्कंद है, 30 अध्याय 21वां श्लोक है, इसमें प्रबुद्ध नामक योगेश्वर कहते हैं क्या, तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम्। क्या समझे, तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम्, अर्थात जो उत्तम श्रेय का जिज्ञासु हो उसे गुरु की शरण लेनी चाहिए। तो अर्जुन इसीलिए कह रहे हैं, इसी श्लोक में क्या कह रहे हैं अर्जुन, क्या कह रहे हैं, ये श्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि समिष्टम्, श्रेय पूछो है ना, गुरु गुरु से श्रेय का प्रश्न करना चाहिए। इसके अतिरिक्त भागवत प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 9 में शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी से प्रश्न करते हैं, आप कृपया सरल विधि से समझाइए कि आपने जन सामान्य के परम कल्याण के लिए क्या निश्चित किया है। तो वो भी भागवत में ही यही प्रश्न कर रहे हैं शौनक आदि ऋषि कि श्रेय किस प्रकार होगा जन कल्याण का, जन सामान्य का। इस श्लोक के तात्पर्य में शीला प्रभुपाल लिखते हैं भगवत गीता में आचार्य की पूजा का आदेश है। श्रेय की प्राप्ति के लिए क्या करो, आचार्य की पूजा करो। आचार्य तथा गोस्वामी निरंतर सामान्य जनता के कल्याण, विशेषतया उनके आध्यात्मिक कल्याण के विचारों में लीन रहते हैं। आध्यात्मिक कल्याण होने पर भौतिक कल्याण स्वतः हो जाता है, अतएव आचार्यगण सामान्य जनता को आध्यात्मिक कल्याण के लिए उपदेश देते हैं। इस कलयुग या कलह प्रिय लौह युग के दोषों को देखते हुए मुनियों ने सूत गोस्वामी से प्रार्थना की कि वे सारे शास्त्रों का निचोड़ प्रस्तुत करें, क्योंकि इस युग के लोग सभी प्रकार से पतित हैं। मुनियों ने यही जिज्ञासा की कि समस्त लोगों का परम कल्याण किस प्रकार हो। तो ये हमने चर्चा की है श्रेयस की, क्योंकि अर्जुन भगवान से प्रश्न कर रहे हैं कि इन दोनों में कौन सा श्रेयस है ना। तो इसके पहले चौथे अध्याय में 40वें श्लोक में भगवान ने कहा था क्या, नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशय आत्मनः, कि जो संशय वाला व्यक्ति है उसके लिए सुख नहीं मिलता, ना तो इस जीवन में और ना अगले जन्म में सुख नहीं मिलता है, है ना, संशय आत्मा संशय वाले को, है ना। और फिर 42वें श्लोक में भगवान ने क्या कहा, 42वें श्लोक में भगवान ने क्या कहा, तस्माद अज्ञान संबोधम हृदिस्थम ज्ञानासीन आत्मनः चित्वेनम संशयम योगम आतिष्ठोतिष्ठ भारत, ज्ञान की तलवार से संशयों को काट करके छेदन करके और योग में स्थित होकर के खड़े हो। तो ज्ञान की तलवार से संशय को छेदन करो, है ना। इसका मतलब क्या है, भगवान का इशारा है अर्जुन से कि अर्जुन अपने संशय का छेदन करें ज्ञान की तलवार से। तो ज्ञान की तलवार किसके पास है, कृष्ण के पास, है ना। तो अर्जुन जो है अपने संशय जब भगवान को प्रस्तुत करते हैं तो भगवान उनको काटते हैं ज्ञान की तलवार से, है ना। तो भगवान ने कहा है कि ज्ञान की तलवार से अपने संशयों को छेदन करके योग में स्थित होकर के खड़े हो जाओ युद्ध करने के लिए। तो इसलिए अर्जुन जो है अपने संशय भगवान के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि भगवान ज्ञान के उपदेश के द्वारा, जो तीखी तलवार के समान है भगवान का जो उपदेश है, तो संशय अर्जुन के संशय सब कटें नष्ट हों और फिर अर्जुन जो है युद्ध के लिए तैयार हों। तो इस प्रकार से अर्जुन का ये प्रश्न था और हमने चर्चा की। धन्यवाद। हरे कृष्ण ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता के जगत गुरु शिला प्रभुपाद के श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा के श्री श्री गौणताय भगवान के श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान के हरे कृष्ण
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे जय 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 प्रभुपाद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे